नौवां अध्याय चीनी इतिहास लेखन। इतिहास अतीतकालिक मानवीय कार्य व्यापारों का अध्ययन करता है। मानवीय कार्य व्यापारियों से संबद्ध होने के कारण इतिहास मूल्यों के प्रति तटस्थ भाव नहीं रख सकता, क्योंकि मनुष्य के समस्त कार्य उसके मूल्यों द्वारा प्रेरित तथा उन पर आधारित होते हैं। किसी भी मानव समाज की इतिहास संरचना तथा इसके सदस्यों द्वारा स्वयं के इतिहास लेखन तथा इसकी सुरक्षा इन मूल्यों को ध्यान में रखकर होती है। इस प्रसंग में भारतीय दृष्टि तथा चीनी दृष्टि को साथ साथ रखकर समीक्षात्मक दृष्टि डालने पर यह तथ्य और स्पष्ट रूप में उभरता है। भारतीय दृष्टि परमार्थ की ओर उद्दिष्ट है तथा सम्यक ज्ञान वही है जो इस श्रेयस की प्राप्ति में सहायक हो, सा विद्या या विमुक्तये। चीनी चिंतना में प्रत्येक अध्ययन तथा ज्ञान की सम्मी चिंता उसकी व्यवहारिक उपादेयता पर आश्रित मानी जाती थी। किसी भी अभिकथन अथवा विश्वास का सामाजिक संदर्भ में क्रियान्वयन चीनी दृष्टिकोण के अनुसार सर्वाधिक महत्वपूर्ण प्रश्न था। चीनी दृष्टि में समाज को मनुष्य से अधिक महत्व दिया गया है। सामाजिक नियम का आधार प्राचीन परंपराओं तथा पूर्व दृष्टांतों को स्वीकार किया गया है। चीनी परंपरा में ज्ञान का अर्थ होता है अतीतकालिक दृष्टांतों का ज्ञान। इस प्रकार की चिंतन पद्धति में अतीत का महत्व स्वतः स्पष्ट है। इसीलिए चीन में निरंतर दरबारी इतिहासकारों के द्वारा इतिहास लेखन की अविच्छिन्न परंपरा रही है। प्रस्तुत अध्याय में चीनी इतिहास लेखन के विकास का विवरण प्रस्तुत किया गया है। चीनी चिंतना की प्रमुख प्रवृत्ति अत्यंत प्रारंभ से ही समाज को मनुष्य से अधिक महत्वपूर्ण मानती रही है। सामाजिक नियमों का पालन तथा सामाजिक परंपराओं के प्रति आदर की भावना मनुष्य के लिए परमावश्यक है। मनुष्य की श्रेष्ठता का प्रमुख प्रतिमान उसके द्वारा अपने विभिन्न सामाजिक संबंधों का सम्यक निर्वहन है। समाज में रहते हुए मनुष्य के अस्तित्व के विभिन्न आयाम होते हैं, जिनमें उसकी स्थिति विशेष प्रकार के व्यवहारों की अपेक्षा रखती है। पूर्व प्रतिष्ठापित नियमों तथा परंपराओं के अनुसार इस विविध अपेक्षाओं की पूर्ति से ही समाज में शांति और सुव्यवस्था संभव है। इसी कारण चीनी अमूर्त सिद्धांतों की अपेक्षा पूर्व दृष्टांतों को अधिक महत्वपूर्ण मानते हैं। ऐतिहासिक दृष्टांतों तथा सुनिश्चित साहित्यिक अभिव्यक्तियों की प्रभुत्वता का स्रोत तथा उद्गम इसी प्रवृत्तियों में ही ढूंढना चाहिए। सामाजिक नियम का आधार प्राचीन परंपराएं तथा पूर्व दृष्टांत होने चाहिए। चीन के विचार में किसी व्यक्ति विशेष की चिंतना शक्ति की अपेक्षा समाज तथा संस्कृति के प्राचीन अनुभवों के फल का सारांश अधिक प्रमाणिक तथा औचित्यपूर्ण है। जीवन के नियंत्रण तथा नियमन में किसी अमूर्त तथा भावमय विचार से उतनी सहायता नहीं मिल सकती जितनी कि उन व्यक्तियों के जीवन संबंधी अनुभवों से, जिन्होंने अतीत में जीवन के विभिन्न पक्षों का साक्षात्कार किया, तत्संबंधी समस्याओं के समाधान की चेष्टा की तथा इसमें सफल अथवा असफल रहे। इस प्रकार चीन वासियों के लिए ज्ञान का अर्थ होता है अतीतकालिक दृष्टांतों का ज्ञान। चीनी भाषा में इस कारण ज्ञान को चीकू अर्थात प्राचीन मार्गों का अन्वेषण कहते हैं। चीनी साहित्य में जिस अभिव्यक्तियों की भरमार दिखाई पड़ती है जो कि विशिष्ट ऐतिहासिक घटनाओं का निर्देश करती है, किंतु परंपरागत प्रयोग में ने जिन्हें सार्वभौमिक तथा अमूर्त भावों की अभिव्यक्तियों का स्वरूप प्रदान कर दिया है। पांच उत्कृष्ट ग्रंथ। इस प्रकार की चिंतन पद्धति में अतीत का महत्व स्वतः स्पष्ट है। चीन वासियों ने सुदूर अतीत में संकलित पांच उत्कृष्ट ग्रंथों को अपने जीवन के प्रतिमान के रूप में स्वीकार किया। इन ग्रंथों में मानव अनुभवों के विभिन्न प्राचीन दृष्टांतों का संकलन है और यह माना गया कि मानव जीवन में चाहे जितना परिवर्तन आ जाए, इन ग्रंथों में इससे संबंध सभी प्रमुख सत्य उपलब्ध रहेंगे। चिंग अर्थात उत्कृष्ट ग्रंथ के लिए चीनी भाषा में अन्य शब्द तीन अर्थात नियम अथवा चंग अर्थात चिरंतनता है, जिससे इन पांच उत्कृष्ट उत्कृष्ट ग्रंथों में निहित सत्य के शाश्वत होने में विश्वास का निर्देश होता है। कन्फ्यूशियन के मत में तो इन पांच ग्रंथों को अपरिहार्य माना जाता था, किंतु अन्य विचार संप्रदायों ने भी इन्हें आदर का स्थान किंतु अन्य विचार संप्रदायों में भी इन्हें आदर का स्थान प्राप्त था। चीन वासियों ने सदैव अपने दैनंदिन जीवन को इन ग्रंथों में संस्थापित प्रतिमानों के अनुरूप ढालने का प्रयास किया, और इसी कारण प्राचीन चीनी समाज तथा संस्कृति में एक प्रकार का स्थायित्व या अपरिवर्तनशीलता का भान होता है। लीव की अवधारणा समाज तथा व्यक्ति के जीवन का नियामक तत्व। इस प्रसंग में चीनी चिंतना में ली का अवधारणा का अवबोध अत्यंत आवश्यक है। प्रसंग में ली का प्रयोग केवल धार्मिक स्वरूप के अनुष्ठानात्मक कृत्यों के लिए होता था, किंतु कालांतर में इस शब्द से विविध सामाजिक महत्व के कार्य व्यापारों यथा विभिन्न प्रकार के पारिवारिक संबंध, राजदूतों का पारस्परिक मिलन, राज दरबार में अपेक्षित व्यवहार, युद्ध भूमि में मनुष्य का कर्तव्य इत्यादि का निर्देश होने लगा। कन्फ्यूशस तथा उसके अनुयायियों ने ली को एक नैतिक अर्थ प्रदान किया तथा इसे समाज तथा व्यक्ति के जीवन का नियामक तत्व माना, जिसके अभाव में ये दोनों अशांति, अव्यवस्था तथा उच्च श्रृंखलता से ग्रस्त हो जाते हैं। ली विभिन्न स्वाभाविक वृत्तियों को समाज द्वारा स्वीकरणीय आकार प्रदान करता है तथा जीवन के सभी कर्मों में आत्मनियंत्रण का अनुप्रवेश करता है। उदाहरणार्थ, यदि साहस के ऊपर ली का नियंत्रण न हो तो वह अविचारी दुस्साहस का स्वरूप ग्रहण कर लेता है। परस्पर विलग सामाजिक स्थितियों में रहने वाले लोगों के बीच जो सामंजस्य दिखाई पड़ता है, वह इस ली के नियंत्रण के ही कारण है। सुव्यवस्थित तथा सुखी जीवन के लिए ली का ज्ञान तथा पालन परम आवश्यक है। चीनी इतिहास लेखन में थिए इतिहासकार का कार्य। उपरोक्त विवेचन से हमें संक्षेप में चीन की उस वैचारिक पृष्ठभूमि का भी ज्ञान होता है जिसके संदर्भ में वहाँ इतिहास लेखन का कार्य अग्रसर हुआ। समाज तथा संस्कृति के प्राचीन अनुभवों के महत्व के अवबोध ने चीनी जनता में इनकी सुरक्षा के प्रति विशेष रुचि जागृत की, और इस प्रकार इसकी व्यावहारिक उपादेयता को देखते हुए इतिहास रचना को एक विशिष्ट महत्व प्रदान किया गया। तथापि प्रवर्ती सिद्धांतों तथा औचित्य स्थापनों की अधिकता के कारण एवं इस संबंध में कुछ प्रमुख स्रोत ग्रंथों, उदाहरण के लिए चोऊ में अनुष्ठान या चोऊली की तिथि की अनिश्चितता के कारण चीनी इतिहास लेखन के प्रारंभ का प्रश्न पर्याप्त उलझा हुआ है। यहाँ तक इतिहासकार के लिए प्रयुक्त शब्द सिंह का मौलिक अर्थ दीर्घकाल तक अशुद्ध रूप में व्याख्यित रहा है। इसका मुख्य कारण परवर्तीकालीन कोशकार सुसेन 100 ईस्वी की अशुद्ध व्याख्या थी, जिसने सिंह को घटनाओं का लेखन करने वाला व्यक्ति के रूप में परिभाषित किया तथा लिखावट की व्याख्या करते हुए कहा कि यहाँ एक हाथ को मध्य चीनी शब्द चुंग को पकड़े हुए दिखाया गया है। उसने मध्य अर्थात चुंग को यथार्थ चीनी चेंग के रूप में परिभाषित किया। संगकालीन भविष्यवाणी से संबंधित अस्थियों पर उत्कीर्ण शब्दों के वैज्ञानिक अध्ययन के आधार पर चीन में बंगकुओ वेई तथा जापान में नाइतो तोरा जीरो अलग अलग इन समान निष्कर्ष पर पहुँचे हैं कि इस शब्द से एक पात्र जिसमें कि धनुर्विद्या की प्रतियोगिता के समय लक्ष्य संधानों का हिसाब रखा जाता था को धारण किए हुए हाथ का निर्देश होता है, तथा यह कि संघ काल में इस उपाधि को धारण करने वाले राजकीय अधिकारी का कार्य इस प्रकार की प्रतियोगिताओं में लक्ष्य संधानों का लेखन था। यद्यपि इस प्रसंग में निश्चित साक्ष्य नहीं है, इससे यह कल्पना की जा सकती है कि कालांतर में सिंह उपाधिकारी राज कर्मचारियों का कार्य क्षेत्र बढ़कर समान रूपेण सभी प्रकार की घटनाओं का लेखन हो गया। चोऊ शासन वंश के काल में इस राजकीय पद के स्वरूप तथा कर्तव्य अधिक निश्चित रूप में दिखाई पड़ते हैं। संभवतः इस समय सिंह महत्वपूर्ण कार्यों के लिए भाग्यशाली तथा दुर्भाग्यपूर्ण दिनों का निर्धारण करता था। युद्ध भूमि में राजाओं के साथ जाता था तथा पूर्ववत लक्ष्य संधान की प्रतियोगिताओं का भी निरीक्षण करता था। यह पद अब पैतृक उत्तराधिकार से निश्चित होने लगा था एवं समाज में इसे अत्यंत सम्माननीय स्थान प्राप्त था। सिंह उपरोक्त कार्यों में स्पष्ट है कि उससे लिखने पढ़ने का ज्ञान अपेक्षित था एवं महत्वपूर्ण कार्यों में वह राजा का मुख्य परामर्शदाता रहा होगा। ऐतिहासिक विवरणों की सुरक्षा का कार्यभार संभवतः परवर्ती विकास है जो इस परिस्थिति विशेष से उद्भूत हुआ होगा कि राजा की विविध प्रशासकीय सभाओं में उसकी उपस्थिति होती रही होगी तथा भविष्य में इनके निष्कर्षों के अभिज्ञान के उद्देश्य से उनका लेखन आवश्यक समझा गया। चोऊ राज के स्वरूप में विस्तरण के परिणाम स्वरूप प्रशासकीय ढांचा जटिल होने लगा। विभिन्न राजनायिक समस्याओं के समाधान के लिए विदेशी राज्यों से राजदूतों का आगमन सामान्य हो गया तथा साम्राज्य विस्तार की आकांक्षाओं से युद्धों की संख्या में अभिवृद्धि हुई। इन सभी का विवरणात्मक लेखन सिंह के कार्यक्षेत्र का अंग बना और तत्परिणाम स्वरूप उसके पद की गरिमा भी बढ़ी। उपरोक्त विकास प्रक्रिया अर्थात यह तथ्य विशेष कि प्रारंभिक इतिहासकार राजदरबारों के कार्यकलापों धार्मिक अनुष्ठानों तथा महत्वपूर्ण राजकीय कार्यों से संबद्ध एक प्रकार का अर्ध धार्मिक राजकर्मचारी था जो कालांतर में प्रलेखों का संरक्षक अथवा दैननिदक ऐतिहासिक वृत्तों का विवरणकार बना का समर्थन चीन की दो प्रमुख ऐतिहासिक कृतियों प्रलेखों का ग्रंथ अथवा इतिहास का ग्रंथ सुचिंग तथा बसंत एवं शरद इतिवृत्त छुन छिहू के उनके इसी अनुक्रम में आने से भी होता है। प्रथम ग्रंथ में प्राचीन शासकों तथा उनके परामर्शदाताओं से संबद्ध भाषणों आज्ञाओं एवं उपदेशों का संकलन है। जैसा कि स्वयं चीनियों की धारणा रही है यह मुख्यतः कार्यों का नहीं शब्दों का संग्रह है। इस संग्रह का प्रमुख प्रयोजन नैतिक शिक्षाओं का उपदेश तथा राजनीतिक प्रश्नों पर उपयुक्त निर्देशन प्रदान करना है और इस प्रकार उनकी प्रमुख प्रवृत्ति ऐतिहासिक नहीं अपितु नैतिक एवं साहित्यिक है। इसके विपरीत दूसरा ग्रंथ तथ्यों का संग्रह है एवं उपदेशात्मक प्रवृत्ति का इसमें सर्वथा अभाव दिखाई पड़ता है। यहाँ यह बताने की आवश्यकता नहीं है कि प्रत्येक संस्कृति का प्राचीनतम साहित्य पौराणिक होता है जिसमें कल्पनात्मक विवरणों की प्रचुरता होती है। धीरे धीरे ही तथ्यों के यथारूप लेखन की चेष्टा प्रारंभ होती है। वर्तमान संदर्भ में भी इसी प्रकार समझना चाहिए। ली ची में यह अभिकथन मिलता है कि जब सम्राट किसी कार्य में प्रवृत्त होता है तो उसका लेखन दक्षिण पार्श्व के इतिहासकार द्वारा किया जाता है। जब वह कुछ कहता है तो उसके लेखन का कार्यभार दक्षिणी पार्श्व के इतिहासकार का होता है। इस कथन की पुनरावृत्ति हान सू द्वारा भी होती है यद्यपि वह इन दोनों के कार्यों का उलट कर बताता है। आगे वह यह भी जोड़ता है कि इस रूप में राजा के अभिकथनों का संग्रह एक ग्रंथ बन गया तथा उनके कार्यों के विवरणों का संग्रह दूसरा। अब यह सर्वमान्य धारणा है कि सम्राट के कार्यों तथा अभिकथनों के लेखन के लिए दो पृथक इतिहासकारों की नियुक्ति वस्तुतः इस तथ्य विषय के परवर्ती और चित्र स्थापना की चेष्टा के कारण है कि ये दोनों ग्रंथ इस प्रकार के भिन्न वस्तु सामग्रियों से युक्त हैं। सुमा चियन इस सिद्धांत की कोई चर्चा नहीं करता, या तो वह इससे परिचित नहीं था अथवा वह इससे बहुत महत्वपूर्ण नहीं समझता था, किंतु अपनों से पहले हो चुके इतिहासकारों का वह प्रायः उल्लेख करता है। इतिहासकार के पद की उसकी अवधारणा केवल इसके धार्मिक एवं अनुष्ठानात्मक महत्व से संबंध नहीं रखती थी अपितु वह इतिहासकार को प्राचीन शासकों के नैतिक गुरु एवं निदेशक के रूप में देखता है। चोऊ शासन वंश की कृतियों में आरंभित इस परंपरा का निरंतर विकास होता गया तथा हान काल की कृतियों में भी इस विश्वास की निरंतरता बनी दिखाई पड़ती है। अपनी पुस्तक के प्रारंभ में ही प्रसिद्ध इतिहासकार सू मा चियन द्वारा प्राचीन इतिहासकार का चित्र प्रस्तुत किया गया है। चीन राजकुल के इतिहास के संदर्भ में वह इस कथा को देता है जो अल्पायु सम्राट चेंग और उसके छोटे भाई के बीच घटी। खेल खेल में बड़े भाई ने तुंग वृक्ष का एक पत्ता उठाकर छोटे भाई को दिया और कहा कि इससे मैं तुम्हें जागीर प्रदान करूंगा। दरबारी इतिहासकार ने तुरंत उपयुक्त दिन का चयन करने की अनुमति मांगी। इस पर बड़े राजकुमार ने कहा कि वह तो हंसी कर रहा था। इतिहासकार ने उपदेशात्मक स्वर में कहा, ईश्वर पुत्र कुछ भी हंसी में नहीं कहते, और बड़े भाई को अपने वचन की पूर्ति करनी पड़ी। सामंतीय राज्यों के प्रारंभिक इतिवृत्त। सामंतीय राज्यों के इन प्रारंभिक इतिवृत्तों के विषय में अधिक कुछ नहीं कहा जा सकता, क्योंकि इसमें से बहुत कम ही शेष बचे हैं। किंतु इनमें से अकेले बसंत एवं शरद इतिवृत्त ने चीनी ऐतिहासिक चिंतन पर प्रभुत्व प्रभाव डाला है। यह स्वरूप तथा अवधारणा दोनों में ही परवर्ती ऐतिहासिक कृतियों द्वारा प्रतिमान के रूप में ग्रहण किया गया। बसंत तथा शरद इतिवृत्त लू राज के 12 सामंतों का इतिवृत्त है, जो 722 ईसा पूर्व से लेकर 481 ईसा पूर्व के समय विस्तार से संबंधित है। इसमें लू राज के आंतरिक मामलों, कूटनीतिक सभाओं, सामंतीय युद्धों के साथ साथ लू का अन्य राज्यों के साथ संबंध, ग्रहण, बाढ़, भूकंप तथा अन्य प्राकृतिक प्रकोपों का भी लेखन हुआ है। विवरण सर्वथा निर्वैयक्तिक है तथा कहीं भी लेखक के व्यक्तित्व अथवा विचार का चिन्ह नहीं दिखाई पड़ता। चीनी परंपरा इसे कन्फ्यूशियस की रचना मानती है। यह असंभव नहीं कि कन्फ्यूशियस तथा उसके शिष्यों ने इस इतिवृत्त में अंकित घटनाओं तथा अस्पष्ट अवतरणों की व्याख्याओं का सम्यक प्रयास किया हो, और इनके प्रयासों के फलस्वरूप ही इस ग्रंथ को इतनी लोकप्रियता प्राप्त हुई हो। कालांतर में इन्हीं व्याख्याओं तथा विस्तरणों के संकलन से इस ग्रंथ की विभिन्न टीकाएँ अस्तित्व में आई होंगी। इसी इतिवृत्त की तीन प्रमुख टीकाएँ कुंग यंग, कू लियंग तथा तुसो सिह, इनमें से प्रथम टीका प्राचीनतम जान पड़ती है। इन टीकाओं में बलात् आरोपित एवं असंगत व्याख्याओं का प्राचुर्य होने पर भी हम इन निम्नांकित तीन अवधारणाओं को देख सकते हैं, जिन्हें सभी टीकाएं इस ग्रंथ के साथ संबद्ध करती प्रतीत होती है। इनमें से प्रथम दो पूर्णतः परस्पर विरोधी हैं। एक इतिहासकार को तथ्यों का यथार्थ तथा निर्वैयक्तिक विवरण प्रदान करना चाहिए तथा दो उसे तथ्यों का लेखन मात्र नहीं करना चाहिए, अपितु उन्हें इस रूप में प्रस्तुत करना चाहिए कि पूर्व कल्पित विचारों के साथ संगत हो। इसकी तीसरी प्रमुख अवधारणा यह है कि अकाल, जल प्लावन, ग्रहण, भूकंप इत्यादि प्राकृतिक जगत की असमान घटनाओं का मानव कार्यकलापों के साथ प्रत्यक्ष संबंध है तथा ये इतिहास को प्रभावित करती है। यह इतिवृत्त सामान्यतया तथ्यों के वास्तविक तथा यथार्थ लेखन का प्रयास प्रदर्शित करता है। साथ ही यह इतिहासकार के लिए इस अपेक्षा का निर्देश करता है कि उसे निश्चित रूपेण ज्ञात वस्तु से अधिक का लेखन नहीं करना चाहिए। सामंत हुआन के 5वें वर्ष में छेन के सामंत पाओ की दो मृत्यु तिथियां क्यों दी गई है, और उत्तर में यह टीका कहती है कि कन्फ्यूशियस इस विषय में निश्चित मत नहीं था और इसी कारण उसने दोनों तिथियां दे दी। क्यूज यज शाखा के सर्वाधिक महत्वपूर्ण व्याख्याता तुज चुज सु ने इस पर टिप्पणी करते हुए कहा कि उसने वही लिखा है जो उसने स्वयं देखा तथा जो स्पष्ट नहीं था उसके विषय में उसने कुछ नहीं कहा है। इस प्रकार जैसा कि हमें इसकी टीकाओं की व्याख्याओं से परिलक्षित प्रतीत होता है, बसंत तथा शरद इतिवृत्त द्वारा तथ्यों का सावधानी पूर्वक लेखन तथा उनकी निर्भीक एवं पूर्वाग्रह विहीन समीक्षा इतिहास लेखन का महत्वपूर्ण मानदंड स्वीकृत होता है। किंतु इसके साथ ही कुछ प्रतिपक्षी मानदंड अथवा आदर्श भी दिखाई पड़ते हैं, जिनसे इस इतिवृत्त का पूर्वोक्त उच्च स्तरीय स्वरूप नष्ट होता है। उदाहरणार्थ, इन टीकाओं में हुई परिवर्जन अथवा निषेध नामक अवधारणा की चर्चा हुई है। सामंत चीन के 10वें वर्ष के प्रसंग में कुंग यंग में यह विवरण मिलता है। बसंत तथा शरद आंतरिक मामलों का विस्तृत किंतु बाहरी मामलों का संक्षिप्त लेखन करता है। अन्य राज्यों के प्रसंग में यह छोटे दोषों पर ध्यान न देकर उनके गंभीर दोषों का लेखन करता है, किंतु आंतरिक मामलों के प्रसंग में अर्थात लू राज्य के भीतर यह बड़े दोषों का परिवर्जन करते हुए केवल छोटे दोषों की चर्चा करता है। पुनः सामंत मीन के प्रथम वर्ष के प्रसंग में कुंग यंग ने यह स्पष्ट कथन मिलता है कि इतिवृत्त में पुजारह व्यक्तियों, घनिष्ठ संबंध एवं पुण्यशील व्यक्तियों के दृष्टांतों में इस प्रकार के परिवर्जन के सिद्धांत का पालन किया गया। इसके साथ ही इतिवृत्त में नैतिक तथा उपदेशात्मक कथाओं की अधिकता है। प्रायः ये कथाएं तथ्यों के सरल तथा यथार्थ विवरण का स्थान लेती दिखाई पड़ती है। अत्यंत प्राचीन विषयों एवं घटनाओं का लेखन होने पर भी तथा कन्फ्यूशियस की रचना के रूप में स्वीकृत होने पर भी वास्तविक इतिहास लेखन के लिए यह इतिवृत्त एक दुर्बल आदर्श था, और इसी कारण परवर्ती चीनी इतिहासकारों में से बहुत ही कम ने अपनी कृतियों को इसके सिद्धांतों के आधार पर व्यवस्थित किया गया स्वीकार किया है। तथापि इस ग्रंथ का परवर्ती इतिहास लेखन पर विपुल प्रभाव पड़ा है, विशेष रूपेण सुमा चियन के दृष्टांत में। सुमा चियन की कृतियाँ। सुमा चियन 145 ईसा पूर्व से 90 ईसा पूर्व प्रथम चीनी इतिहासकार है, जिसके विषय में हमें अपेक्षाकृत प्रचुर सूचना प्राप्त है। साथ ही वह चीन के प्रमुखतम इतिहासकारों में एक है। उसने सिह ची इतिहासकार के लेख नामक ग्रंथ की रचना की, जो 130 अध्यायों में विभक्त है तथा जो सुदूर अतीत से लेकर सुमा चियन के अपने काल तक के चीनी तथा अन्य विदेशी जातियों के इतिहास का विवरण प्रदान करता है। लगभग 200 वर्षों से जब से यह लिखा गया, चीनी ऐतिहासिक कृतियों में यह सर्वाधिक लोकप्रिय ग्रंथ रहा है एवं परवर्ती काल की बहुसंख्यक ऐतिहासिक रचनाओं द्वारा इसके स्वरूप को एक प्रतिमान के रूप में स्वीकृत किया गया। इसकी वस्तु सामग्री तथा वर्णन शैली ने न केवल चीनी साहित्य को अपितु चीनी संस्कृति के प्रभाव में स्थित अन्य देशों के साहित्य को भी प्रभुत मात्रा में प्रभावित किया है। चीन, कोरिया तथा जापान में सुमा चियन का प्रभाव स्पष्ट रूप में द्रष्टव्य है। सुमा चियन का इतिहास 5 मुख्य शासन वंशों एवं बहुसंख्यक अपेक्षाकृत गौन सामंत कुलों के इतिहास का निरूपण करता है। यह ग्रंथ वस्तुतः परिवर्तन का इतिहास है, जिसमें 2000 वर्षों के काल विस्तार में विभिन्न शासन वंशों के गौरव के उत्थान तथा पतन की कथा एक विशिष्ट लयात्मकता के साथ प्रस्तुत की गई है। इतिहास लेखन के अपने लक्ष्य का उद्घाटन करते हुए सुमा चियन ने कहा है कि वह अतीत के कार्य व्यापारों एवं घटनाओं का परीक्षण एवं उनकी सफलताओं एवं असफलताओं, उनके उत्थान तथा पतन के पीछे स्थित सिद्धांतों का अनुसंधान करना चाहता है। प्राचीन काल के अन्य प्रमुख इतिहासकारों के समान उसकी कृति भी उपदेशात्मक है, जो जैसा कि इसे एक प्राचीन अभिकथन में अभिव्यक्त किया गया है, पाप के निराकरण एवं पुण्य के प्रोत्साहन में प्रवृत्त है। इस उपदेशात्मक लक्ष्य के कारण चीनी ऐतिहासिक कृतियों में कथाओं की विपुलता दिखाई पड़ती है। ये कथाएं कभी कभी पर्याप्त दुर्बोध एवं साहित्यिक सूक्ष्मताओं से युक्त होती है। प्रायः घटनाओं अथवा वृत्तों के प्रत्यक्ष विवरण को छोड़कर नाटकीय घटनाओं अथवा दृश्यों के माध्यम से इतिहासकार द्वारा बिना किसी टिप्पणी के ऐतिहासिक पात्रों के स्वरूप को स्पष्ट करने का प्रयास दिखाई पड़ता है। सिंह ची में ऐसे दृष्टांतों का विपुल भंडार प्राप्य है। बहुसंख्यक प्रवर्ती इतिहासकारों ने ऐसी कृतियों का प्रणयन किया है जो अधिक विस्तारपूर्ण तथा व्यवस्थित हैं अथवा इतिहास के रूप में अधिक विश्वसनीय एवं प्रमाणिक हैं, किंतु इनमें उस नाटकीय शक्ति तथा कल्पनाशील अभ्यर्थना का अभाव है जो सिंहची में दिखाई पड़ती है। यही कारण है कि चीन के साहित्य पर इसका अत्यंत व्यापक प्रभाव पड़ा है और आज भी इसकी लोकप्रियता पूर्ववत बनी हुई है। सुमा चियन का विचार था कि ऐतिहासिक तथ्य जिस रूप में उसे प्राप्त हुए हैं उस रूप में ही वह कही जाने वाली कथा को पर्याप्त रोचक एवं शिक्षाप्रद ढंग से प्रस्तुत कर सकेंगे। उनको यथारूप प्रस्तुत करना ही वांछनीय है। यह सिद्धांत बसंत एवं शरद इतिवृत्त में भी मिलता है, किंतु इसके साथ ही दूसरा सिद्धांत अर्थात इतिहास घटनाओं का केवल यथारूप लेखन ही नहीं प्रत्युत नैतिक एवं उपदेशात्मक प्रयास भी है, समान रूप में सुमा चियन के ग्रंथ में स्थान पाता है। यह उल्लेखनीय है कि ऐसे बौद्धिक परिवेश में जहाँ इतिवृत्त तथा इसकी टीकाएँ प्रधानतम ऐतिहासिक कृतियों के रूप में स्वीकृत थी, उनके प्रभाव से बच सकना अत्यंत दुष्कर था। सिंह ची के एक आधुनिक समीक्षक ची चेन हुआई ने दो सिद्धांतों की ओर निर्देश किया है जो उसके अनुसार किसी घटना विशेष अथवा व्यक्ति के विषय में उसके लेखन को नियंत्रित करते हैं। प्रथम सिद्धांत पर्याप्त स्पष्ट है, अर्थात यह कि इतिहासकार इस बात से बचना चाहता था कि एक ही घटना का दो अथवा तीन स्थानों पर भी समय बचाने के उद्देश्य से पूरी घटना का विस्तृत विवरण केवल एक बार दिया गया है और कभी कभी किसी अन्य महत्वपूर्ण पात्र की चर्चा आने पर पूर्वोक्त विशद विवरण का उद्धरण मात्र देकर काम चलाया गया है। दूसरा सिद्धांत पहले का स्वतः अनुगमन करता है। घटना विशेष का विवरण उस व्यक्ति की जीवन के संदर्भ में किया जाए जिसके साथ यह घनिष्ठ रूपेण संबंधित है और जो इससे वस्तुतः प्रभावित रहा है। तथापि इन दो सिद्धांतों में सुमा चियन की अधिकांश कार्यविधाएँ व्याख्यित हो सकती हैं, किंतु ये सभी की व्याख्या नहीं प्रस्तुत कर सकती। पानकू का पूर्ववर्ती हान युन का इतिहास हानसू। सुमा चियन के लगभग 150 वर्षों के बाद पानकू नामक इतिहासकार ने पूर्ववर्ती हान युग का इतिहास लिखा। यह तृतीय शताब्दी ईसा पूर्व में हान वंश की स्थापना से लेकर अनधिकार रूप से राजसत्ता हस्तगत कर लेने वाले वांग मंग के पतन के पश्चात 23 ईस्वी में इस शासन वंश से संबद्ध लिव कुल के एक व्यक्ति द्वारा इसके पुनः स्थापन तक का दो शताब्दियों का इतिहास था। पूर्ववर्ती हान वंश का इतिहास हान सु विविध रूपों में सिंह ची के स्वरूप के आधार पर लिखा गया था। इन दोनों में केवल यह स्पष्ट अंतर दिखाई पड़ता है कि विषय वस्तु सीमित होने के कारण पान कु में प्राचीन इतिहास के प्रति उपेक्षा भाव दिखाई पड़ता है। केवल एक अपवाद प्राचीन तथा आधुनिक व्यक्तित्वों की सारणी में मिलता है। इसमें भी आधुनिक का सर्वथा अभाव है और प्रारंभिक चीनी विद्वानों ने इस भाग के उद्देश्य निर्वाह की पर्याप्त आलोचना की है। तथापि इन दोनों ग्रंथों में भिन्नताएं बहुत ही कम है। यहाँ यह उल्लेखनीय है कि सुमा चियन द्वारा सिंह ची का प्रणयन सर्वथा व्यक्तिगत प्रयास था और यही बात पान कु के पिता पान पियाओ द्वारा रचित प्रवर्ती परंपराएं फोर्ट चुआन के संबंध या के विषय में भी कही जा सकती है। जब पान कु ने अपने पिता के कार्य को विस्तारित करने का विचार किया तो उसने भी व्यक्तिगत रूप से ही इस कार्य को प्रारंभ किया, किंतु बाद में इस क्षेत्र में उसके कार्य सम्राट मिंग की इच्छा पर किए गए थे। किंतु हान सू में पूर्ववर्ती हान वंश को गौरवान्वित रूप में प्रदर्शित करने का कोई ऐच्छिक प्रयास नहीं दिखाई पड़ता। विभिन्न शासकों तथा उनके शासन कालों का विवरण प्रदान करते समय इनके दोषों और कमियों को उद्घाटित करने के प्रति कोई उदासीनता नहीं दिखाई गई है। यहाँ तक कि जहाँ अध्यायों के सारांश दिए गए हैं और जिसमें इतिहासकार का अपना निर्णय सन्निविष्ट है, उन स्थानों पर भी यहाँ पान कु के हान शासकों के प्रति समीक्षात्मक बुद्धि का एक दृष्टांत लें। परवर्ती हान के शासक अंतिम शासन कर रहे सम्राट के वंशधर नहीं थे, वे अपना वंश संबंध केवल सम्राट चिंग से स्थापित कर सकते थे, जिसकी 140 ईसा पूर्व में मृत्यु हुई थी। इनके इस पूर्वज के जीवन के दो अत्यंत कुत्सित कार्यों को बिना किसी हिचकिचाहट के उल्लेखित किया गया है। 154 ईसा पूर्व में अपने प्रमुख समर्थक चाओ तसो की हत्या को न रोक सकने की दुर्बलता तथा अपने परामर्शदाता चोऊ यफू के प्रति उसकी घृणा और कालांतर में उसकी हत्या, यदि केवल यह माना जाए कि यहाँ पान कु ने केवल सिंह ची की विवरण का अनुकरण किया है, जो तो भी अपने ग्रंथ में उसके स्वतंत्र निर्णय लिए जाने का तथ्य स्थापित होता है। सार्जेंट ने पान कु के ग्रंथ को सब्सिडाइड हिस्ट्री कहा है तथा यह केवल शासन कर रहे राजवंश का राज्य प्रेरित राजनीतिक इतिहास है, यह कहकर आलोचना की है, किंतु यह विचार ठीक नहीं जान पड़ता तथा डब्स एवं फुलसबे नामक विद्वानों ने इसका गंभीर प्रत्याख्यान किया है। विश्लेषणात्मक इतिहास का उद्भव। प्रवर्ती हान युग में इतिहास लेखन के क्षेत्र में जो सर्वाधिक महत्वपूर्ण विकास हुआ वह था विद्वानों के इतिहासकार के पद पर नियुक्ति। अब तक राज दरबार के ज्योतिषी ही इतिवृत्तकार के कार्य का भी संपादन करते थे और दोनों पद अभिन्न थे। इस काल में यह परंपरा समाप्त हुई एवं उनकी वस्तु सामग्री का बाहर के लोगों में हस्तांतरण हुआ। यह कार्य 177 ईस्वी तक चलता रहा। जिस मकान में रहते हुए विद्वान यह कार्य करते थे उसके आधार पर इसे पूर्वी मंडप से उपलब्ध हान इतिवृत्त तुंग कुआन हान ची की संज्ञा प्राप्त हुई। प्रथम शताब्दी ईस्वी में पान कु तथा अन्य विद्वानों को राजकीय पदाधिकारी के रूप में नियुक्ति की प्रवृत्ति के परिणाम स्वरूप सातवीं शताब्दी में तुंग काल में इतिहास लेखन के विभाग की स्थापना हुई। एक अन्य महत्वपूर्ण विकास दूसरे क्षेत्र में हुआ, विशुद्धतः विश्लेषणात्मक इतिहास का उद्भव। इस समय तक बसंत एवं शरद इतिवृत्त ही प्रथम यथार्थतः ऐतिहासिक लेखन की अभिव्यक्ति करते थे तथा सुमा चियेन ने भी अपने सिंह ची में इतिवृत्त को एक अभिन्न अंग के रूप में ग्रहण किया था। संभवतः संक्षिप्त एवं सुव्यवस्थित कृतियों के प्रणयन की इच्छा के फलस्वरूप सुन हुहे द्वारा विशदाकार हान सु का संक्षेपण किया गया। इस संक्षेपण में एक निरंतरता युक्त विश्लेषणात्मक संरचना के अनुसार वस्तु सामग्री को पुनः व्यवस्थित किया गया तथा जीवनियों एवं ग्रंथों से उपलब्ध सूचनाओं को भी इसमें जोड़ा गया। परवर्ती कालों में भी इन हान शासन वंश के इतिवृत्तों में हान ची के उदाहरण को सदैव एक अनुकरणीय मानदंड के रूप में लिया गया। इस प्रकार के ग्रंथों का सर्वोत्तम दृष्टांत प्रसिद्ध इतिहासकार सुम्मा कुवंग 1019 से 1986 ईस्वी लिखित प्रशासन में 1019 से 1086 ईस्वी लिखित प्रशासन में सहायता का दर्पण तुसु ची तुंग चियन हैं। हान इतिवृत्त में हमें सर्वथा सुरक्षित रूप में प्राप्त होते हैं। सी ची हान सु की सूचनाओं की शुद्धता के परीक्षण के लिए इसका एक प्रमाणिक उपकरण के रूप में प्रयोग किया जा सकता है। उन 24 मानक इतिहासों चेंग सिंह में जिन्हें चिंग शासन वंश के अंतर्गत मान्यता प्राप्त हुई 9 इतिहास ग्रंथों के वर्ण विषय का समय विस्तार तंग शासन वंश से मिंग शासन वंश तक का है। एक विशिष्ट वर्ग के रूप में लेने पर ये 618 ईस्वी से लेकर 1644 ईस्वी के बीच विभिन्न अवसरों पर संपूर्ण चीन अथवा इसमें किसी भूखंड पर शासन कर रहे विभिन्न शासन वंशों के राजकीय प्रलेखों का प्रतिनिधित्व करते हैं। अतएव इन ग्रंथों में निहित सिद्धांतों तथा शैलियों के अध्ययन से चीन के राज प्रेरित इतिहास लेखन की स्वरूप संरचना पर पर्याप्त प्रकाश पड़ता है। चीनी इतिहास ग्रंथों की विशेषताएं। इन सभी इतिहास ग्रंथों की कुछ महत्वपूर्ण विशिष्टताएं हैं। ये सभी विनष्ट शासन वंश के अनुवर्ती शासन वंश के अंतर्गत अथवा और बाद की तिथि में लिखे गए। इस बात का महत्व इसमें निहित है कि इस प्रथा का निरंतर निर्वाह किया गया एवं बाद में आने वाले शासन वंश ने विनष्ट शासन वंश के समय की घटनाओं तथा शासकों के विषय में लेखन आवश्यक एवं महत्वपूर्ण समझा। इनकी दूसरी विशिष्टता यह है कि इनमें से प्रत्येक किसी एक व्यक्ति की रचना न होकर एक विभाग के सम्मिलित कार्य का फल है, अर्थात राजा की ओर से इतिहासकारों के एक वर्ग को यह कार्य भार दिया गया। इसका केवल एक अपवाद 5 शासन वंशों का नवीन इतिहास सीन बू ताई सी है, जो कि एक ही व्यक्ति ओउ चंग सियू द्वारा लिखित स्वतंत्र कृति है। इस प्रकार ये तंग युग के पहले लिखे गए मानक इतिहासों जो सामान्य रूपेण किसी एक व्यक्ति द्वारा स्वतंत्र रूपेण प्रारंभ किए गए कार्य के परिणाम हैं, के विपरीत राज प्रेरित इतिहास ग्रंथ हैं। तुंग शासन वंश से राज प्रेरित इतिहास ग्रंथों की प्रमुखता दिखाई पड़ती है और सभी विद्वानों ने इस प्रवृत्ति को चीनी इतिहास लेखन में एक विशिष्ट विकास के रूप में लिया है। इन ग्रंथों की एक तीसरी विशिष्टता यह है कि ये एक संघटनात्मक कथानक जीवनी शैली में लिखे गए हैं, अर्थात संपूर्ण ग्रंथ को 3 या 4 विभागों में विभक्त किया गया है और ये सभी एक दूसरे से पूरक हैं। इस शैलो विशेष को सदैव इतिवृत्तों की शैली से पृथक रख कर देखा जाता है, जिसमें बहुतेरी महत्वपूर्ण एवं प्रभावी इतिहास ग्रंथों की रचना हुई किंतु मानक इतिहासों में जिसका कभी भी प्रयोग नहीं हुआ है। इस संगठनात्मक शैली का मानक इतिहासों के साथ इतना घनिष्ठ संबंध है कि अत्यंत प्राचीन काल से तुंग शासन काल में ही मानक इतिहासों को इस शैली के आधार पर परिभाषित किया गया। इन इतिहास ग्रंथों में स्रोत क्रमानुगत शासन वंशों में एक लघु काल विस्तार से संबंध ऐतिहासिक लेखन थे। इनमें प्रमुख राजकीय लेखन प्रत्येक शासक से संबंध कार्य तथा विश्राम की दैनिदिनी चीचूचू थी, जो विशिष्ट रूप से इस कार्य के लिए नियुक्त राजकीय इतिहासकार द्वारा तैयार की जाती थी। पुनः 57 प्रशासन के लेख सिंह यंग ची होते थे, जो प्रधानमंत्रियों एवं उनके सहायकों द्वारा तैयार किए जाते थे। प्रमुख रूप से इन दोनों के आधार पर दैनिक लेखों जिह ली का लेखन अथवा संकलन किया जाता था और ये सभी मिलकर शासक के विश्वसनीय लेखों सिह लू का स्रोत बनते थे। इन कृतियों तथा अन्य राजकीय संकलनों के आधार पर कुछ शासन वंशों ने अपने राजकीय इतिहासकारों द्वारा तथाकथित राष्ट्रीय इतिहास कुओ सिह का प्रणयन करवाया, जो संगठनात्मक शैली में लिखे गए थे। इन मानक इतिहासों के लेखन में अंतर्निहित सिद्धांतों में दो सर्वाधिक महत्वपूर्ण सिद्धांत क्यों और कैसे प्रश्नों से संबंध है। प्रथम प्रश्न के उत्तर में दो महत्वपूर्ण सिद्धांत लेख की निरंतर तथा लाभप्रद उद्धरण के संप्रेषण के संदर्भ में आते हैं। जहाँ तक लेखन की निरंतरता का प्रश्न है, प्रत्येक शासन वंश, पूर्ववर्ती शासन वंश अथवा शासन वंशों के विषय में अभिज्ञान आवश्यक समझता था। पूर्ववर्ती लियाओ तथा चीन शासन वंशों के विषय में लेखन कार्य के महत्व पर बल देते हुए युवान कालीन विद्वान बंगोओ ने लिखा, प्राचीन काल से यह नियम द्रष्टव्य है कि राज नष्ट हो सकता है किंतु इसका इतिहास कभी नष्ट नहीं होता। सामान्य रूप में पूर्ववर्ती शासन वंशों का इतिहास अनुवर्ती शासन वंश द्वारा इसीलिए लिखाया गया है क्योंकि परवर्ती पीढ़ियों द्वारा ही निर्णय तथा मूल्यांकन में निष्पक्षता लाई जा सकती है। इस विद्वान का समय लगभग 1261 ईस्वी है। 1369 ईस्वी में मिंग शासन वंश के संस्थापक सम्राट ताई तुसु ने अपने दरबार को संबोधित करते हुए कहा, सभी युवान राजधानी पिकिंग के पतन के पश्चात हमें 13 शासकों के विश्वसनीय लेख प्राप्त हुए हैं। यद्यपि उनका राज नष्ट हो गया है तथापि इसकी घटनाओं का लेखन किया जाना चाहिए। इसके अतिरिक्त इतिहास सफलता एवं असफलता का वृत्तांत प्रदान करता है और जिससे एक ओर प्रोत्साहन और दूसरी ओर चेतावनी मिलती है। इस कारण इसका परित्याग उचित नहीं है। जहाँ तक दूसरे सिद्धांत अर्थात लाभप्रद उद्धरण का प्रश्न है, इतिहास को एक दर्पण तथा शिक्षा स्रोत के रूप में ग्रहण करने की अवधारणा अत्यंत प्राचीन काल तक ढूंढी जा सकती है और सभी इतिहास ग्रंथों में इसे समान रूपेण सम्माननीय मान्यता प्राप्त रही है। सत्य लेखन तथा सत्य संगोपन कैसे के प्रश्न पर हमें परस्पर विरोधी सिद्धांतों के दो वर्ग दिखाई पड़ते हैं, सत्य लेखन और इसके विरोध में नैतिक पक्षपात अथवा उचित संगोपन हुई। सत्य लेखन का सिद्धांत अत्यंत प्राचीन है। तसो परंपरा तसो चुआन जो कि प्राचीन इतिवृत्त हैं में बसंत तथा शरद युगीन ऐसे विविध इतिहासकारों की चर्चा मिलती है जिन्होंने अपने जीवन की चिंता न करते हुए सत्य लेखन के कर्तव्य का निर्वाह किया। इस सिद्धांत के पीछे यह अवधारणा थी कि इतिहास लेखन करते समय इतिहासकार आकाश के नीचे स्थित सभी लोगों तथा भावी पीढ़ियों के प्रति उत्तरदायी होता है। इतिहासकार का स्वतंत्र अत्यंत महत्वपूर्ण समझा जाता था। राजकीय इतिहासकार के मन में किसी प्रकार की दुश्चिंता न रहे, इस उद्देश्य से शासन से यह अपेक्षा की जाती थी कि वह अपने शासन काल की कार्य तथा विश्राम की दैनदिनी को न पढ़े। इस परंपरा का पर्याय उल्लेख मिलता है, किंतु इतिहासकार के स्वातंत्र का व्यतिक्रमण सर्वथा असमान नहीं था। यद्यपि शासक अपने शासन काल की दैनदिनी को पढ़ने से विरक्त हो सकता था, तथापि उसके अपने शासन काल के तथा विनिष्ट शासन वंश के संबंध में सभी ऐतिहासिक लेखन उसके अंतिम अनुमोदन के लिए लाए जाते थे। इस अनुमोदन की अपेक्षा तथा इसके साथ इस परंपरा के कारण कि प्रधानमंत्री ही इस प्रकार की सभी ऐतिहासिक परियोजनाओं का अधीक्षक होता था, ऐतिहासिक लेखन के ऊपर राजनीतिक प्रभावों का पड़ना अत्यंत स्वाभाविक था। मिंग तथा चिंग शासन काल में राज्य की निरंकुशता में वृद्धि के साथ साथ इस प्रकार के प्रभाव में भी वृद्धि होती गई। समय समय पर प्रधानमंत्री की प्रार्थना पर शासक द्वारा इन ऐतिहासिक परियोजनाओं से संबद्ध इतिहासकारों के लिए राजकीय निर्देश दिए जाते रहे। स्वाभाविक था कि आज्ञापालक संकलनकर्ताओं द्वारा इन निर्देशों का पालन किया जाता क्योंकि इससे संबद्ध, इससे उनका स्वयं का उत्तरदायित्व हल्का हो जाता था। सत्य लेखन के सिद्धांत के समान सत्य गोपन का सिद्धांत उतना ही प्राचीन है। बसंत शरद इतिवृत्त की टीका कुंग यंग में यह सूचना दी गई है कि अपने इतिहास लेखन में कन्फ्यूशियस ने तीन श्रेणियों के लोगों की गंभीर गलतियों का संगोपन किया था। आदरणीय तसुनचे, घनिष्ठ संबंधी चीनचे तथा योग सीएनचे अर्थात इतिहासकार को ऐसे वर्गों के व्यक्तियों की गलतियों को नैतिकता में वृद्धि के लिए यथास्थान उल्लेखित नहीं करना चाहिए। सत्य लेखन तथा सत्य संगोपन के सिद्धांतों के परस्पर विरोध को समझते हुए राजकीय इतिहासकारों ने सदैव प्रथम सिद्धांत की दूसरे की अपेक्षा अधिक चर्चा की है। सत्य संगोपन की दृष्टांत इतिहास लेखन की सभी अवस्थाओं में तथा सभी प्रकार के प्रयत्न प्रभुत्व मात्रा में मिलते हैं। इस सिद्धांत में यह माना जाता था कि यदि किसी एक अवस्था में सत्य संगोपन किया गया है, बाद में कभी उसका सुधार किया जा सकता है, क्योंकि यह आवश्यक नहीं है कि कोई भी व्यक्ति विभिन्न पीढ़ियों की दृष्टि में समान रूपेण आदरणीय हो, किंतु व्यवहार में ऐसा होना संभव नहीं था और प्रायः पुराने संगोपन बने रहते थे और नए जुटते रहते थे। चाओ प्रथम ने सत्य संगोपन की एक रोचक विधि बताई है, स्पष्टतः जिसका प्रयोग तुंग तथा मिंग काल के इतिहास में किया जाता था, उदाहरणार्थ उस व्यक्ति के प्रसंग में जो अत्यंत नैतिकता संपन्न था, उसकी छोटी मोटी गलतियों को उसके जीवनी में नहीं देकर अन्य स्थानों पर दिया गया। चाओ प्रथम ने इस विधि को सामान्यतः इतिहास लेखन में उचित बताया और इसका औचित्य स्थापन इस सिद्धांत के आधार पर किया कि इतिहासकार का यह प्रथम कर्तव्य होना चाहिए कि वह सत्य लेखन के सिद्धांत के प्रति आदर भाव रखते हुए भी नैतिकता में वृद्धि लाने का प्रयास करे। निष्कर्ष: चीनी चिंतन में अध्ययन या ज्ञान की समीचीनता उस ज्ञान की व्यवहारिक उपयोगिता पर आश्रित मानी जाती है। प्राचीन काल में किसी भी विश्वास या कथन का सामाजिक संदर्भ में क्रियान्वयन महत्वपूर्ण समझा जाता था। जानने की सार्थकता तभी है जब वह कर्म को किसी प्रकार प्रभावित कर सके। इसीलिए चीनी चिंतन में समाज मनुष्य से अधिक महत्वपूर्ण है। मनुष्य की श्रेष्ठता का मानदंड उसके द्वारा सामाजिक आदर्शों का परिपालन है। किसी व्यक्ति के विचारों की अपेक्षा समाज और संस्कृति के प्राचीन अनुभवों के फल का सारांश प्रमाणिक और औचित्यपूर्ण समझा गया है। इस प्रकार चीनवासियों के लिए ज्ञान का अर्थ होता है अतीतकालिक दृष्टांत का ज्ञान। चीनी भाषा में इसीलिए ज्ञान को चीकू अर्थात प्राचीन मार्गों का अन्वेषण कहते हैं। स्पष्ट है कि इस प्रकार की चिंतन पद्धति में अतीत महत्वपूर्ण होगा। संभवतः इसीलिए चीनियों ने सुदूर अतीत में संकलित 5 उत्कृष्ट ग्रंथों को, जिनमें मानव अनुभवों के दृष्टांत संकलित हैं, अपने जीवन के प्रतिमान के रूप में स्वीकार किया। ये ग्रंथ सूचिंग, छून छिहू, सी चिंग ई चिंग तथा ली ची के नाम से ज्ञात है। चिंग का अर्थ होता है उत्कृष्ट ग्रंथ। इसके लिए चीनी भाषा में दूसरा शब्द है तियेन अर्थात नियम अथवा यंग अर्थात निरंतरता। इससे इन ग्रंथों में निहित सत्य के शाश्वत होने का निर्देश होता है। इनमें मानव अनुभवों के प्राचीन दृष्टांतों का संकलन है और यह मान लिया गया है कि मानव जीवन में भले ही परिवर्तन हो जाए, परंतु इन ग्रंथों में जीवन से संबद्ध सभी प्रमुख बातें सत्य रहेंगी। चीनियों ने सदैव अपने जीवन को इन ग्रंथों में संपादित प्रतिदानों के अनुसार ढालने का प्रयत्न किया। इसीलिए चीनी समाज में एक प्रकार के स्थायित्व अथवा अपरिवर्तनशीलता का आभास होता है। इन ग्रंथों के संपादन का श्रेय कन्फ्यूशियस को दिया जाता है। चीनी समाज में प्राचीन अनुभवों के महत्व के अवबोध ने चीनी जनता में सुरक्षा के प्रति विशेष रुचि जागृत की। अनुभवों की व्यावहारिक उपादेयता को देखते हुए इतिहास लेखन को विशेष महत्व प्रदान किया गया। किसी भी पूर्व देश और अधिकांश पश्चिमी देशों की अपेक्षा चीन के इतिहास पर सर्वाधिक मूल स्रोत उपलब्ध है। चीनी इतिहास लेखन परंपरा विश्व की श्रेष्ठ परंपराओं में से है। इससे चीन में घटी प्राचीन घटनाओं का न केवल वर्ष माह बल्कि दिन तक जाना संभव है जाना सकना संभव है इससे चीन में घटी प्राचीन घटनाओं का न केवल वर्ष माह बल्कि दिन तक जान सकना संभव है। चीन में इतिहासकार राजकीय अधिकारी व्यक्ति होता था, उसकी संज्ञा थी सिंह। प्रारंभ में इतिहासकार धार्मिक अधिकारी या देवज्ञ होता था, जिसका कार्य धार्मिक अनुष्ठानों को कराना, सम्राट के लिए भाग्यशाली और दुर्भाग्यपूर्ण दिनों की घोषणा करना था। उसके लिए लिखना पढ़ना आवश्यक होता था, क्योंकि वही पंचांग को भी देखता था। परवर्ती युग में यह पद पैतृक उत्तराधिकारी का उत्तराधिकार का हो गया। धार्मिक अधिकारी के कार्यों में सुरक्षा का भार परवर्ती विकास है। इस प्रकार उसके कार्यों में राज दरबार के कार्यकलापों और राजकीय अनुदेशों को लिपिबद्ध करना भी सम्मिलित हो गया। इसीलिए प्रलेखों के संरक्षण का भार भी उसी पर आया। इस बात का समर्थन दो कृतियों से होता है, प्रलेखों का ग्रंथ एवं इतिहास का ग्रंथ। चीन के प्राचीन इतिहासकारों अथवा उनके ग्रंथों के विषय में भी मैं कुछ भी कहना कठिन है, क्योंकि दुर्भाग्य से दूसरी सती ईसा पूर्व में सी हांग टी नामक सम्राट ने प्राचीन ग्रंथों को नष्ट करवा दिया। इसीलिए चीन का प्राचीनतम ज्ञान इतिहासकार 145 ईसा पूर्व में जन्मा सुमा चियन है। उसने तत्कालीन समय में उपलब्ध सूचनाओं के आधार पर अतीत का पुनः इतिहास लिखने का प्रयत्न किया। सुमा चियन ने स्वीकार किया है कि उसके समय में केवल चीन राज्य के सामंती इतिवृत्त शेष थे और वे भी अधूरे संपादित होकर वे और भी संक्षिप्त हो गए। उसके अनुसार प्राचीन ग्रंथों में सी चिंग तथा सु चिंग का अस्तित्व इसीलिए बना रहा कि उनकी कुछ प्रतियां प्राचीन परिवारों में सुरक्षित थी। दूसरी ओर स्मृति से भी लोग सु चिंग की कविताओं का संज्ञान करते थे। परंपरा से ज्ञात होता है कि सम्राट वेन 179 से लेकर 197 ईसा पूर्व के समय में एक 90 वर्ष के व्यक्ति ने सुंग के एक भाग का पाठ किया था। इसके कुछ अध्याय दूसरी सती के अंत में कन्फ्यूशियस के घर की दीवार से उपलब्ध हुए। इस प्रकार किसी तरह से प्राचीन इतिवृत्त का पुनर्निर्माण किया गया। सुमा चियन के पश्चात जो इतिहास लेखन की परंपरा अबाध गति से चलती रही, बेई ली ने सुमा चियन से प्रारंभ करके 24 आधिकारिक इतिहासों की सूची दी है। सुमा चियन में कुछ दशक पश्चात पन पियाओ 354 ने सुमा चियन की रचना पर आलोचनात्मक ग्रंथ लिखा। इसके ग्रंथ का नाम था होऊ चुआन प्रवर्ती परंपराएं। यह स्वतंत्र रूप से लिखा गया विवरण था। विषय वस्तु सीमित होने के कारण पान कू की रचना में प्राचीन इतिहास के प्रति उपेक्षा का भाव दिखाई देता है। यह स्मरणीय है कि इस ग्रंथ में हान वंश को गौरवान्वित करने का प्रयत्न दिखाई नहीं देता है। इसमें तत्कालीन शासक तथा उनके शासनकाल के दोष और कमियों का विवरण दिया है। कहीं कहीं पर इतिहासकार स्वयं अपना निर्णय भी देता है। यह बात पुरानी परंपरा के विपरीत नए मानदंड की स्थापना करती है। चीनी परंपरा का यह विश्वास महत्वपूर्ण है कि राज नष्ट हो सकता है परंतु इतिहास नष्ट नहीं हो सकता। चीन में सत्य लेखन का सिद्धांत अत्यंत प्राचीन है, किंतु इतिहासकार के स्वातंत्र्य का अतिक्रमण अथवा असमान बात नहीं थी। सत्य लेखन के समान चीन में सत्य गोपन संगोपन का सिद्धांत भी उतना ही प्राचीन है। सत्य संगोपन में इतिहासकार नैतिकवादी वृद्धि के लिए विशिष्ट व्यक्तियों की त्रुटियों को यथास्थान उल्लेखित न करके दूसरे स्थान पर दूसरी प्रकार से उल्लेखित करते थे। समाप्त।